तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम,
ज्वालासी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम,
महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम,
ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महा
पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन मेरा में बाबा की आस हो, बाबा की आस हो, श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंख नाद हो,
ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
हो शांति। लोहे की दीवारें, पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी, अंतर में संघर्ष छिपाए तेरा जीवन जलता होगा, हाँसों में छिप क्रंदन तेरा भोले जग को छलता होगा, पर अनजाने में तो तेरी अखिया भी भर आती होगी। लोहे की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी, जग की खुशियों पर न्यौछावर होगा कब तेरी, चाहे पलकों के डोरों में कब तक नापेगा जीवन की राह। सोच रही हूँ बुझती कितनी होगी, ये जीवन बाती होगी, लोहे की दीवारे पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। जागृति का संदेश लिए जब लेती होगी वायु हिलोरे, उषा की आभा से रक्तिम होती होगी नभ की कोरे। जब के आंगन में जब चिड़िया गाती मधुर प्रभाती होगी, लोहे की दीवारे पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी। आकाश असुरक्षित है, आकाश असुविधाजनक है, आकाश जोखिम से भरा हुआ है, आकाश किसी भी तरह का वादा नहीं करता। आकाश कंफर्ट जोन के बाहर है और एक पिंजरा सुविधाजनक है, एक पिंजरा सारी सुख सुविधाओं से भरपूर है, सुरक्षा है, समय पर भोजन मिलता है, कमाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे पक्षियों का खतरा नहीं है, बारिश आंधी और तूफान सबसे सुरक्षित, फिर भी पंछी उदास है, पंछी दुखी है, क्यों क्यों? क्योंकि बंधन दुख है, गुलामी पीड़ा है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव उड़ना है, विमुक्त गगन में पंख पसार एक उड़ान भरना, ये उसका स्वभाव है। जब तक चेतना अपने स्वभाव से दूर है, दुखी है, चेतना मुक्त है और मुक्ति के अतिरिक्त तो उसे कुछ भी दिया जाए वो पीड़ा में ही रहेगी। स्वतः है परतंत्रता, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं अपने साथ लाए, परंतु बेड़िया बेड़िया है, कारागार कारागार ही है, जंजीरे जंजीरे ही है, पराधीनता है, दुख है, चार प्रकार की शाखाओं की चर्चा इस मुरली में है। कौन सी? छोटी बड़ी लंबी पतली नहीं, दूसरी चार शाखाएं, उंगली कंधा नहीं, पहली शाखा स्वभाव संस्कार को देखना वर्णन करना, दूसरों के स्वभाव संस्कार को देखना और वर्णन करना, ये बंधन है, ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है, झूठ तो इनके रग रग में भरा है, उसके बाप को भी हम जानते हैं, झूठ बोलते ही मरा, फिक्स्ड ओपिनियन से व्यक्तियों के विषय में। ये भूलना नहीं है कि हर एक चीज यहां नित्य है और बदल रही है, जैसे हम बदल गए वैसे वो भी बदल रहे, जो हमने उनके मन में अवधारणा बनाई है शायद वो बदल चुके हैं, दूसरा, दूसरी डाली आधार, किसी को आधार बना के रखा है, निराधार नहीं है, आधार है, वो है तो सब ठीक, वो नहीं, ये जो वो है ये व्यक्ति भी हो सकता है, कमरा भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, कोई संबंध हो सकता है, कोई पद, कोई पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन, कुछ भी, कुछ तो है जो आधार है। वो आधार अगर हिल गया, हट गया, दूर हो गया तो थर थर कांपने लगते हैं। तीसरा, लगाओ, कोई एक लगाओ, वो लगाओ इस किसी पेन में भी हो सकता है, वो लगाओ किसी में भी हो सकता है, अपनी ही विशेषताओं में लगाओ, अपनी ही रचना में लगाओ। जो कविता लिखी उस कविता में इतना मोहित हो जाते हैं कि उसी को पढ़ते रहते हैं दिन रात, और सुनाते भी है, और दूसरे सुनना चाहते नहीं। चौथा, गुण और शक्तियों की कमी। कोई एक गुण है, कोई एक शक्ति है जो मिसिंग है, और ये डिफिशियंसी, ये कमी ही बंधन है। तो ये चार प्रकार के बंधन सुनाए। तीन प्रकार के पंछी उस डाली पर बैठे हैं, तीन प्रकार के पंछी इधर है, समीप है। वो तीन कौन से हैं? एक चतुर, दूसरे कमजोर, और तीसरे भोले भाले। चतुर वो है, छुड़ाओ छुड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ कहते हैं, परंतु उड़ते नहीं है। पिंजरा है, दरवाजा खुला है, पर जिसने दरवाजा खोला वो दुश्मन जैसा लगता है। तुमने दरवाजा क्यों खोला? जो बेड़ियों को तोड़ता है आकर, अंदर ही उसके प्रति एक गहरी नफरत होती है, तुमने हमारी बेड़िया क्यों खोली? और चिल्ला रहे हैं स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, इनकलाब जिंदाबाद, मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। और मुक्त करने जो आता है वही दुश्मन है, क्योंकि तुमने हमारी असुविधा में खलल डाली। तो पहले पंछी है चतुर, जो बाबा से कहते हैं, बाबा हमको छुड़ाओ, आप छुड़ाओ, मुक्तिदाता आपका नाम है। और बाबा कहते हैं, छूटो, छोड़ो, तब छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन चारों में से कोई एक डाली को पकड़ के है, स्वभाव संस्कार, कोई लगाव, कोई कमी, कोई आधार, उसको नहीं छोड़ना चाहते। सुदामा की कहानी सुना सुना कर न मालूम कितने साधु संत कुबेर बन गए। तीन पंछी इधर है नजदीक, हाँ, तो दूसरे कमजोर वाले, कमजोर वाले पंछी वो है जो उड़ना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, परंतु विधि पता नहीं, युक्ति पता नहीं, युक्ति से मुक्ति कैसे हो, अज्ञान है। सब कहते हैं मुरलियां पढ़ो सारे उत्तर मिल जाएंगे, मुरलियां पढ़ी उत्तर कुछ नहीं मिला। मुरली में उत्तर न मिलने का क्या कारण है? व्यक्ति रिलेटेड नहीं, मुरली रिलेटेड कारण बताओ। व्यक्ति संबंधित नहीं, मुरली संबंधित। वाक्य गोपनीय है, रहस्यों से भरपूर, इतना जल्दी समझ ही नहीं आते, पहला पॉइंट। दूसरा, मुरलियां लंबी लंबी है, लंबाई में सार खो जाता है। तीसरा, रिपीट, व्यक्ति संबंधित कारण नहीं, मुरली संबंधित कारण पूछ रहे। रिपीट 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 होते रहता है, उसमें दोहराव है बहुत बार, वो दोहराव की वजह से बातें पकड़ में नहीं आती कई बार। चौथा, व्यक्ति संबंधित नहीं, मुरली संबंधित कारण पूछ रहे हैं। व्यक्ति संबंधित है वो, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। समझ में आ रहा है प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न व्यक्ति संबंधित नहीं पूछा है, व्यक्ति मुरली संबंधित, मुरली हाईली फिलोसॉफिकल है, इनडायरेक्ट है, रहस्यों से भरी हुई है, बहुत लंबी है, दोहराव है उसमें, और उदाहरणों से समझाया गया है। कौन सा पक्षी, कौन सा झाड़, कौन सी डालिया, कौन से चतुर पक्षी, किसकी बातें चल रही है? ये जीवन तो हमारा यहां है, सुबह 9 बजे डिपार्टमेंट में जाते हैं, 5 बजे आते हैं, कौन सा पक्षी? हम तो रहते हैं सेंटर पर, पक्षी कहां है? कौन से पक्षी की बातें चल रही है? कौन सा चतुर, कौन सी डाली? सारी भाषा जो है पोएटिक है, हाईली पोएटिक लैंग्वेज। ये जो भाषा है ये तुरंत एब्स्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट पकड़ में नहीं आती है। डायरेक्ट ये नहीं है कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। ये मुरली कैसी है? इसमें रहस्य है, इसमें अदृश्य संदेश छिपे हुए, संदेश इतने प्रकट नहीं है जो तुरंत दिखाई दे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। यहां बातें चल रही है, आज वतन में बाबा, फिर एक झाड़ देखा, फिर रमणीक, फिर पंछी देखे, सब उड़ना भी चाहते, रंग बिरंगी पंछी। अरे हमारा तो प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है, इसमें कहां है? कौन से पंछी, कैसे पंछी? और बाबा की हिंदी साधारण हिंदी नहीं है, हाईली शेक्सपियरियन हिंदी है ये। जैसे इंग्लिश में भी शेक्सपियरियन इंग्लिश होती है, वो एक अलग इंग्लिश है, एकदम अलग। एक उदाहरण दिया जा रहा है, उसमें दूसरा उदाहरण, उसके अंदर तीसरा उदाहरण, बात कोई और है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। ये उस पक्षी के जैसा है, वो पक्षी उसके जैसा है, और वो उसके जैसा है। And as the imagination bodies forth forms of things unknown, poet's pen turns them to shape and gives to airy nothing a local habitation and name. Shakespeare का एक पात्र कहता है, कवि की कलम कैसी है? उस कल्पना की तरह है। कल्पना एक पंछी है, एक फैंसी, जैसे वो कल्पना निकल रही है, और वो कल्पना एक कलम की तरह है, और उस कलम से वो चीजें निकल रही है जो एयर ही नथिंग, हवा में जो कुछ भी नहीं है उसको एक साकार रूप दे रहे। इसका उदाहरण वो, उसका उदाहरण वो, समझो जो समझना है। तो मुरली भी उदाहरणों से भरी है, एक मेटाफर से भरी है, रूपक, रूपकात्मक है, रूपक है उसमें। वो आपको समझना है किस पक्षी की बात चल रही है, कौन सी डाली की बातें चल रही है, कौन से पक्षी जो तीन उधर है, एक चतुर है, एक कमजोर है, एक बहुत ही भोला भाला नादान पक्षी, उसे तो पता ही नहीं उड़ना भी है, उसे पता ही नहीं कि ये बंधन है। बचपन से ही बेचारा जेल में है, जन्म ही जेल में हुआ, धर्म का जेल, विचारों का जेल, संस्कारों का जेल। और क्या कारण है मुरली न समझ में आने के लिए, मुरली जीवन में न लागू होने के लिए? मुरली वाले कारण, व्यक्ति वाले नहीं। व्यक्ति वाले नहीं, मुरली वाले कारण। कोई भी मुरली बीच से चालू होती है और कहीं पे भी पूरी हो जाती है। उस एक को समझने के लिए चार और समझना पड़ेगा, आगे आगा पीछा क्या है उसका, तो समझ में आएगी। जैसे दादी जानकी की क्लासेस होती थी, वो क्लास वही समझ सकता था जो एक घंटा पहले क्या हुआ दादी के साथ, या रात में क्या हुआ, या उसके पहले दिन क्या हुआ। क्लास में अचानक कोई भी उदाहरण आ जाता था ये केवल वही लोग समझ सकते हैं जो आसपास रहे हैं, जो कल कुछ हुआ, यहां कुछ हुआ, उसमें अचानक उदाहरण आ जाएगा। या जिसने पहले दिन की मुरली पढ़ी, अचानक मुरली से वरदान की कोई एक लाइन, एक शब्द उस क्लास में आ जाता है। ये वैसा ही है। एंड मुरली कंटिन्यूअस स्पीच है, एक कॉमा, ये सब तुम्हारा ग्रामर वो मानता ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, कहाँ वाक्य खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, कुछ नहीं। पैराग्राफ वाइज, पैराग्राफ तो हमने बनाया, उसने थोड़ी ना बनाया। बोलते हुए उसने बोला कि अभी मुरली यहाँ, एक पैराग्राफ टू उसने बोला, एक दो तीन चार। कई बार तो मुरली में आता है बाबा चार बातें देख रहे, तो दिल तो धड़धड़ी करता है कि चौथी पॉइंट आएगी कि नहीं आएगी। कई बार तो आती नहीं, तीसरी नहीं आती तो चौथी नहीं आती, और जब कभी बोलते हैं और चौथी बात, तो पता चलता है दूसरी और तीसरी कहाँ थी, बैक जाके पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट है, और मुरली स्पोकन स्पीच है, बाबा ने बैठ के लिखे नहीं है किताबें और पब्लिश की, लिटरेचर डिपार्टमेंट ये लोग किताब रेडी है पब्लिश करो, 1981 की अव्यक्त मुरलिया रेडी है, अब मैं जा रहा हूँ छुट्टी पर, पढ़ो तुम लोग। ऐसा नहीं किया है उसने। और यहाँ पे कुछ भी होता है, अचानक बिजली जाती है तो मुरली रहेगी बाजू में, अब बिजली पर मुरली है, लाइन आई गई, ये खेल, तुम तो खेल नहीं करते हो, ये मक्खी 5000 साल पहले भी उड़ी थी, अब मक्खी का मुरली से कोई लेना देना नहीं है। मुरली इज एन, मक्खी जो है वो एलियन है, बीच में आ गई मुरली में, पर वो भी उसका भी पार्ट है, भगवान के मुख से उसके बारे में कुछ शब्द निकले इसके लिए वो आई। वो स्पेशल मक्खी जिसके लिए भगवान ने कुछ कहा, उसका भी भाग्य होगा कुछ तो। तो ये मुरली के कारण है, इसलिए मुरली रीडिंग इतना आसान नहीं है। और वो कोई भाषण नहीं है, वो फॉर इनफॉर्मल टॉक्स है, जैसे कोई बाप है बैठे है, जैसे मनोरिंद्रा दादी हिस्ट्री हॉल में बैठती थी, आओ जल्दी नजदीक आओ नजदीक आओ नजदीक आओ, दादी का क्लास है, दादी का क्लास क्या, वो बैठे हुए आसपास सबको इकट्ठा कर रहे और हाँ तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, ये एक रूप। और ओम शांति भवन में तुरंत तुम बताओ क्या था, दोनों रूप थे। तो ये भी ऐसा ही है, इनफॉर्मल टॉक है, इसका क्या, वो तो रिटर्न कर लिखा वो एक बहुत बड़ी बात, उसमें तो कितनी सारी चीजें लिखी ही नहीं है, जो हुई है क्या क्या लिखे। वो आता है शाम को 6 बजे, दूसरे दिन 8 बजे तक, 6 बजे तक, एक एक मिनट का लिखे क्या लिखे। तो कठिनाइयां तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है। तो पहले पक्षी चतुर, दूसरे पक्षी कमजोर, तीसरे पक्षी भोले भाले, उनको पता ही नहीं कि मुक्त भी होना होता है, वो तो आराम से चल रहे हैं, ठीक है सब, पिंजरे में ही जन्म लिया पिंजरे में ही मरे, आकाश का पता ही नहीं उनको। ये उधर के तीन पक्षी, तीन पक्षी इधर, एक उंगली में है जो कि श्रीमत फल है, एक कंधों पर है जो सहयोगी, उसमें भी दो है, एक सदा सहयोगी और एक सदा कभी सहयोगी कभी वियोगी, और तीसरे वो है जो गोल गोल घूम रहे चक्कर लगाने वाले, देखेंगे करेंगे गे गे की भाषा बोलने वाले। तो तीन पक्षी इधर और तीन इधर, और सबको एक ही संदेश है, छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे। तो आज की मुरली से काम, सबसे पहला काम ये पता है क्या है, बंदूक नहीं है ये, कौन बताएगा ये क्या है, कौन सी मुद्रा है ये, मुद्रा है एक शेपन मुद्रा, शेपन ये त्याग की मुद्रा है, ये मुद्रा जब धारण की जाती है, हर मुद्रा का बहुत महत्व है, तो सारा स्ट्रेस टेंशन, ये जो दो इंडेक्स फिंगर है वो सामने रहेंगे, क्यों, तो इसी मुद्रा में सभी बैठेंगे और लंबी श्वास लेंगे, और श्वास के साथ ऊर्जा शक्ति पॉजिटिविटी अपने अंदर, इसको नीचे रखो ऐसे, ठीक, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी, आधार को छोड़ो, और श्वास लेते हुए अनुभव करना है कि ऊर्जा शक्ति सकारात्मकता मेरे अंदर जा रही है, और जब प्रश्वास श्वास जब छोड़ेंगे एक्सहेलेशन जब करेंगे, उसमें फिर अनुभव करना है कि मेरे अंदर जो स्ट्रेस है टेंशन है ईगो है अटैचमेंट है बंधन है वो सब कुछ मैं रिलीज कर रहा हूँ, और ये जोर से करना है, और छोड़ते समय मुंह से भी श्वास छोड़ना है जिससे आवाज आए। तो चालू करते हैं, और ये नीचे रहेगी, नीचे ही रहेगी हमेशा के लिए, नीचे रहेगी अर्थात सारी निगेटिविटी फिर नीचे चली जाएगी, ये उसी की मुद्रा है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं शेपन मुद्रा। तो स्टार्ट करते हैं, इनहेल, धीरे धीरे इनहेल करेंगे, फिर से एक बार धीरे धीरे इनहेल करो कि ऊर्जा शक्ति स्फूर्ति, एक्सहेल, फिर से एक बार थोड़ी देर रोक के रखो और इमेजिन करो कि वो पूरे शरीर में ऊर्जा जा रही है, और फिर एक्सहेल, फिर से एक बार। पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति फैल रही है। निगेटिविटी सब कुछ बाहर छोड़ो, बंधन निगेटिविटी फिर से एक बार नीचे छोड़ दो सब कुछ। तो ये एक्टिविटी है आज, जो दिन में बीच बीच में करते रहना, इसको कहते हैं शेपन मुद्रा। तो आज की मुरली से पहला काम विजुलाइजेशन, मैं उड़ता पंछी हूं, इसका क्या करना है, एक चित्र बनाना है, मानस चित्र देखना है अपने आप को, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, मुक्त गगन में उड़ रहा हूं, मुझे कोई बंधन नहीं रोक सकता, कोई पीड़ा, कोई सलाखे, कोई पिंजरा नहीं रोक सकता, मैं स्वतंत्र हूं, निर्बंधन हूं। कोई भय नहीं, निर्भय हूं, अभय हूं, दबंग हूं। दूसरा, डीक्लटर टास्क, अपना कमरा या ऐसी कोई जगह, कोई अलमारी जो कपड़े भरे हैं, उसमें जो फालतू की चीजें और व्यर्थ की जो बातें रखी है स्टोर हाउस में, उस सबको क्या करना है, खाली कर देना है। और वो करते करते इमेजिन करो, सोचो कि मैं अपने मन के कमरे में जो कचरा भरा है उसको खाली कर रहा हूं। तो आज ये काम करना है, सफाई अभियान। क्या करना है, कमरे में ऐसा कोई ड्रॉवर, कोई बॉक्स, कोई कैबिनेट, कोई अलमारी या बेसिन, कुछ भी, बेसिन का पाइप होता है ना, कोरुगेटेड पाइप, उसको क्लीन करो। मुरली वैसी है तो अपने होमवर्क भी थोड़े उल्टे पुल्टे ही होने चाहिए। तीसरा, डिजिटल लाइफ, मोबाइल लो और पहला तो देखो इसमें कौन कौन से ऐप ऐसे हैं जो फालतू के हैं, और उनको क्या करो, अनइंस्टॉल। 6 महीना बहुत ज्यादा समय है, 1 महीने में जिसको यूज ही नहीं किया उसको हटाते जाओ, अनसब्सक्राइब, अनफ्रेंड, डिलीट, स्पैम। माता है कह रही हूं कि कहा है, कौन सी बातें चल रही है, पता नहीं, हमको तो खाली मोबाइल हेलो और रखना आता है, बाकी पता नहीं कुछ। तो ये बहुत बड़ी माया है। एक नया शब्द कल ही न्यूज़पेपर में आया, एकदम नया, वो उनके लिए शब्द है जो, हाँ ये है, ब्रेन रॉट, ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। ब्रेन रॉट हैज बीन अनाउंस्ड एज ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 अमिड कंसर्न ओवर पीपल एंडलेसली स्क्रॉलिंग एंड वॉचिंग सोशल मीडिया कंटेंट। इट इज डिफाइंड एज, उसकी परिभाषा क्या है, supposed deterioration of one's mental and intellectual state specially due to over consumption of online content which is trivial and unchallenging। internet mein jo din raat dekhte rehte ho vyarth ka, wo sab dekhne se man ki kshamata jo kam ho rahi hai uske liye 2024 mein ek naya shabd ijaad hua hai, brain rot। dekhte rehte hain reels, shorts, न्यूज आर्टिकल्स, ये सारे ऑनलाइन कंटेंट, जो भोजन का कंजम्पशन होता है ऑनलाइन भोजन, उससे जो मन की क्षमता कम होती है। भारत में गुरुकुल होते थे, कुछ था क्या उधर ऑनलाइन, कुछ भी नहीं था, फिर भी एक बार मंत्र सुनते थे याद रह जाता है जीवन भर, एक बार शास्त्र पढ़ते थे गुरुकुल के छात्र विद्वान बन जाते थे। अभी हमारे पास हजारों मेमोरी टेक्निक्स है, फिर भी कुछ याद नहीं रहता है। ये सारी मुरलियां यदि अव्यक्त बाप दादा द्वापर में उन गुरुकुल के छात्रों को सुनाते तो सारे छात्र उसी दिन संपूर्ण बन गए होते, इतने उनकी पावरफुल ब्रेन थी, सतोप्रधान बुद्धि। तो डिजिटल लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें जो कर रहे हैं उसको हटाना है। तीसरा, पोएट्री। कौन सी पोएट्री, एक पक्षी अपनी डाली को छोड़कर उड़ रहा है, उस पक्षी की भावनाओं पर कविता लिखनी है। कौन सा पक्षी छोड़ रहा है, उसकी क्या भावना है वो सोचना है, मैं वो पक्षी हूं, अपने को ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री, मैं वो पक्षी हूं जो कि दाली को छोड़ रहा हूं। अब मुझे क्या है, चैलेंजेस, असुविधा, अज्ञात में छलांग लगा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा वहां, कौन से मित्र मिलेंगे, कौन से बाज पक्षी आके मेरा आहार तो नहीं करेगा, कोई तूफान आएगा, कोई आंधी आएगी, धूप मुझे जला तो नहीं देगी, बैठने का कोई स्थान नहीं, आराम कहां करूंगा, यहां तो अच्छा बिस्तर था, समंदर ही समंदर में जा रहा हूं। नेचर वॉक, आकाश प्रकृति में जाओ और केवल पंछियों को एक साथ जो उड़ते हैं ना उनको खाली देखो, बस बस और कुछ नहीं, उड़ रहे। अगला, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, इनमें से कोई भी, या तो फोटो खींच लो उनकी उड़ते पक्षियों की, या उड़ता पक्षी निकालो, या फिर उड़ता पक्षी बनाओ, कागज का पक्षी बनता है ना, क्राफ्ट वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट काम, इसमें तीन बातें हैं, या पहला तो अपनी एक कमी, एक कमजोरी, एक बंधन, एक लगाव, एक डाली लिखो और उसको फाड़ दो या जला दो या फ्लश कर दो वॉशरूम में जाकर, एक, या फिर और एक बलून लो, गुब्बारा, उसमें अपनी कमजोरी लिखो कागज में, गुब्बारे में डालो और उसको उड़ाओ और देखो उड़ रही है, खत्म हो गया। लास्ट, ये काम सबको करना है आज, एक बीज बोना है, ट्री प्लांटेशन, और बीज बोते हुए संकल्प करना है मैं एक नई आदत जो ले रहा हूं उसका ये बीज बो रहा हूं, और रोज जैसे जब वो झाड़ उगेगा, खिलेगा, बढ़ेगा, वो संकल्प ही बढ़ता जाए। तो आज एक बीज बोना है गार्डन में, किसी का भी बो, जिसका बोगे उसका फल पाओगे। तो ये है आज के कार्य, सबसे पहला कार्य विजुअलाइजेशन, सभी आंखें बंद करेंगे और अपने आप को उड़ता पंछी के रूप में देखेंगे, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, बस उड़ रहा हूं, अकेला मैं पंछी आकाश में उड़ रहा हूं, आकाश को देखो, पंखों को देखो, नीलांबर को देखो। दूसरा कार्य, आज सोचो कि कौन सी चीज साफ करनी है कमरे में, आंखें खोल देंगे, कौन सी चीज मुझे साफ करनी है। तीसरा, मोबाइल में जब भी अननेसेसरी जो चीजें इंस्टॉल करके रखी है, भर के रखी है, डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर के, लैपटॉप पर, इतना सारा चीजें रहती है, इसमें भी है खाली नहीं, फ्रंट पेज, डेस्कटॉप शुड बी फ्री, एक 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 फोल्डर ले लो सारा मिला के उसमें डाल दो, बहुत सारा मत रखो, ढूंढना ही पड़ता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। किसी व्यक्ति का कमरा देखकर यह बताया जा सकता है उसके मन की स्थिति क्या है। दादी जानकी कहती थी, मैं कहीं जाती थी किसी के घर में, सबसे पहले किचन में जाती थी, देखती थी वो बर्तन विर्तन कैसे रखे हुए, रात में खाना खाया झूठे बर्तन रखे हुए, रोते हैं बर्तन जब झूठे उनको रात भर रखा जाता है, तो वो भले मेड सुबह आती होगी पर कम से कम वाटर से रिंस तो उसको कर ही सकते, रादर देन खाया हुआ और वो सारा वैसा के वैसा रखना। झूठे बर्तन रखने नहीं है रात में, रात भर ये सोचते हैं फिर वो पैसा किसका लेती है, हम वाली ये उसकी बात नहीं है, ये मन की बात है। तो डिजिटल लाइफ, फिर एक कविता, फिर नेचर वॉक, और इनमें से कोई भी, या तो फोटो ले लो उड़ते हुए पंछी का, एक साथ जो उड़ रहे फोटो है ना ऐसे, या फिर ड्राइंग बनाओ एक पंछी का, ये जो बना हुआ है स्केच, या फिर क्राफ्ट, बच्चे बनाते हैं ना कागज का हेलीकॉप्टर, वो उड़ने वाली चीज, यहां पर भी एक बार एक्सरसाइज कराई थी, कागज दिए थे उड़ने वाली चीज बनाओ और सब बनाने में लग गए, और फिर उत्तर क्या था, ये था सबसे फास्ट। लास्ट काम, अपनी कमजोरी, कमजोरी या अटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट बहुत दुख देती है और हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो अटैचमेंट जो है ना सोने के बंधन है, और सोना तो कीमती है, कैसे निकाल के फेंकते, लोहे का हो तो निकाल के फेंक भी सकते, सोने की ही किसने चेन दे दी और वो चेन गला दबा रही है, कैसे निकाले।
दूसरा बलून और लास्ट
सीड प्लांटिंग। तो कोई भी एक सीड ले लो, नहीं है तो ला लो और उसको किसी गार्डन में या किसी जगह पर प्लांट कर दो। तो ये थी आज की मुरली, छोड़ो तो छूटे। पिंजरे के पंछी रे, गीत तो होगा तो देखो, नहीं तो छोड़ो। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द ना जाने कोई, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरा भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। चुपके चुपके रोने वाले, रखना चुपके दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, यहाँ कोई ना तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई। ओम शांति। दर्द दे दो, अपने आप को उड़ता हुआ पंछी देखते रहेंगे आकाश में, उड़ रहा हूं और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, उड़ते जाओ, उड़ान भरनी है, परवास भरनी।
जिस इंसान को पंछियों को कैद करने का बड़ा शौक था, आज प्रकृति ने उसी इंसान को उसी के घर में कैद कर दिया है। ए इंसान, कैसा लग रहा है अब तुझे इस कैद में?
जाने को, तेरा दर्द न जाने।